शान की चेहरे पर पहले हैरानी से भावो भर आए, फिर वो बेड से नीचे उतरकर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और सख्त निगाहों से उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें मैं अपने करीब आने दूँ। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ सोने के लिए क्यों कहा आपने, और अंशु को साथ लाने से क्यों मना किया? तुम्हें यहाँ सोने को कहा क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाओ या अपने बाप और भाई से बात करने लगो, इसलिए मुझे तुम हर पल अपनी निगाहों के सामने चाहियो। रही बात अंशु को साथ न लाने की, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के दिमाग में कुछ गलत बात जाए। आई होप अब जो गलतफहमी तुमने अपने दिमाग में बिठाई हुई है वो दूर हो गई होगी, तो अब आकर चुपचाप सो जाओ। अपनी बात कहकर वो साइड से निकलते हुए वॉशरूम में चला गया, क्योंकि आरवी की शक भरी नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं। आरवी उसको जाते हुए देखती रही, फिर अपना सर झटक कर दूसरी तरफ जाकर लेट गई। कुछ देर बाद जब शान बाथरूम से बाहर आया, तब तक मैं थकान की वजह से आरवी नींद की आगोश में जा चुकी थी। शान अपनी तरफ आकर बैठ गया और उसको एक टक देखने लगा। काफ़ी देर तक वो उसको निहारता रहा, फिर उसके थोड़ा करीब खिसक कर लेट गया और कोहनी बेड पर टिकाए हथेली को अपने गाल पर लगाए आरवी की तरफ तिरछे होकर उसे निहारने लगा। कितना कुछ था उसके दिल में, पर लब खामोश थे। अचानक ही उसको आरवी की कुछ देर पहले की बात याद आ गई और उसके चेहरे पर दर्द के भावो भर आए। उसने आरवी के चेहरे को देखते हुए मायूसी से कहा, तुमने मुझे इतना गिरा हुआ कैसे समझ लिया? कैसे सोच सकती हो तुम कि मैं तुम्हें यहाँ अपना हक आजमाने के लिए बुलाऊंगा? अगर हक ही जताना होता तो बहुत से मौके थे मेरे पास, कब का तुम्हें अपना बना चुका होता, पर नहीं किया मैंने ऐसा। करना तो क्या कभी सोचा भी नहीं। जब तुमसे नफरत करता था तब भी मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने के बारे में नहीं सोचा। फिर अब तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, फिर कैसे तुम्हें वो जख्म दे सकता हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ दे? नहीं कर सकता मैं ऐसा। मैं तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ कुछ गलत न करूँ, पर इस दिल के हाथों मजबूर हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा। फिर कैसे सोच लिया तुमने मेरे बारे में ऐसा? पर शायद गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने ही तुम्हें ऐसा सोचने की वजह दी है, पर ट्रस्ट मी, वो पहली और आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। अब कभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारे जागते हुए तो ना तुमसे बात कर सकता हूँ और ना ही दो मिनट तुम्हारे चेहरे को देखकर अपनी बेचैन निगाहों को सुकून दे सकता हूँ। तब तो तुमसे नफरत का नाटक करना पड़ता है। तुम्हारे सोने के बाद ही मुझे मौका मिलता है तुम्हें जी भरकर देखने और तुमसे बात करने का। और अंशु साथ लाने से मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका असर उस पर पड़े या वो हमें लड़ते झगड़ते देखकर डिस्टर्ब हो। जैसा तुमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं था। शान काफ़ी देर तक उसको यूं ही निहारता रहा, फिर वो वापस उससे दूर होकर लेट गया और जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह जब आरवी की आँख खुली तो वो शान के सीने पर अपना सर रखे सो रही थी और शान ने भी उसकी कमर पर अपनी बाहों को लपेटा हुआ था। शायद नींद में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। आरवी खुद को शान के इतने पास देखकर हड़बड़ाहट में उसे दूर होने लगी, पर उसकी कमर को शान ने जकड़ा हुआ था जिस वजह से वो उससे दूर नहीं जा सकती। उसकी निगाहें अब शान के चेहरे पर चली गईं जिस पर सुकून नजर आ रहा था। आरवी कुछ पल उसको यूं ही निहारती रही, फिर उसने अपनी कमर पर से उसकी बाहों को बड़े ही ध्यान से हटाया और बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही शान ने अपनी आंखें खोल दीं और बाथरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। असल में जब आरवी ने उससे दूर होने की कोशिश की थी तभी शान की नींद भी खुल गई थी, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि अगर तब वो आंखें खोल देता तो दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती। फिर ऐसे तो वो उससे नफरत दिखाता था और नींद में उसे सीने से लगाए सुला रहा था। अगर आरवी कुछ सवाल कर लेती तो क्या जवाब देता? यही सब सोचकर उसने सोने का नाटक करना ही ठीक समझा। आरवी कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर निकली तो शान बेड पर नहीं था। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी कि कम से कम उसे अभी तो शान का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अपने कामों में लग गई। आज फिर आरवी रिहर्सल हॉल में बैठी हुई थी। आज सारे दिन में कुछ सीन्स की ही रिहर्सल हुई थी जिसमें दोनों दोस्तों ने मिलकर साथ में कंपनी शुरू की थी जो वक्त के साथ सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। उसके बाद उनके बच्चों को भी दिखाया गया। एक के दो बच्चे थे, बड़ा लड़का और छोटी लड़की, जबकि दूसरे के बस एक ही बेटा था। दोनों लड़कों के बीच भी गहरी दोस्ती थी और उन दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था। शान को आज इन ऑफिस में ज़रूरी काम था तो उसने ड्राइवर को आरवी को घर छोड़ने को कह दिया था और खुद ऑफिस निकल गया था। आरवी को आज मौका मिल गया था। उसने कार में बैठते ही अर्जुन को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से अर्जुन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो कौन? अर्जुन के पास आरवी का नंबर नहीं था इसलिए अननोन नंबर देखकर उसने सवाल किया, जिस पर आरवी ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया मैं हूँ आरवी। आरवी का नाम सुनते ही अर्जुन के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने सामने रखी फाइल बंद की और उठकर खड़े होते हुए बोला, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं जिंदा हूँ फिलहाल। ठीक उस दिन होऊंगा जब सब ठीक कर दूंगा। ये सब छोड़ और चल ये बता कि शान ने दोबारा तेरे साथ बदतमीजी तो नहीं की। आरवी ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं भैया, वो दूर ही रहते हैं मुझसे और कहते हैं कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ। आरवी के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई, पर उसने जल्दी ही उसे छुपाते हुए कहा, भैया आपको कुछ पता चला? अर्जुन उसकी भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए उसने भी उस बात को नहीं छेड़ा और इनकार में सर हिलाते हुए चिंता भरे स्वर में बोला, नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। उस इंसिडेंट्स को सालों बीत गए इसलिए कहीं कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। आरवी तू एक काम कर, अंकल से पूछ कर देख। शान तो कुछ नहीं बताएगा तुझे, पर अगर अंकल को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करे तो शायद वो तुझे सारी सच्चाई बता दे और उसके बाद हमारे लिए आगे का काम आसान हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर आरवी ने मायूसी भरे स्वर में कहा, मैंने डैड से पहले पूछा था पर उन्होंने बताने से इनकार कर दिया था। तू एक बार और कोशिश करके देख, क्या पता इस बार वो तुझे कुछ ऐसा बता दे जो हमें आगे का रास्ता दिखा दे। अर्जुन के जोर डालने पर आरवी ने कुछ देर सोचने के बाद हामी भरते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं आज डैड से इस बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ। कुछ देर और दोनों ने बात की, फिर बाई बोलकर फोन कट कर दिया। आरवी अब सोचने लगी कि सुभाष जी से इस बारे में कैसे बात करे। घर पर अर्पिता जी और अंशु भी होंगे, फिर कैसे शान के आने से पहले इस बारे में सुभाष जी से बात कर पाएगी। पर शायद आज क्रिसमस उसके साथ थी। जब वो घर पहुंची तो छाया ने बताया कि अर्पिता जी अंशु के साथ अनुपमा जी से मिलने गई थी और सुभाष जी अपने कमरे में है।
शादी के अगले ही दिन प्रेम, वो शख्स जिसे प्रीति ने अपना हमसफर माना था, वो उसे हमेशा के लिए छोड़ गया। कोई वजह नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक चिट्ठी और बहुत सारे सवाल उसके हिस्से में छोड़ गया। बिखर चुकी थी प्रीति, अपनों ने मुंह मोड़ा, समाज ने ताने मारे और रिश्तों ने अपनी शक्ल बदल ली, पर किस्मत ने अब तक अपने सारे पत्ते नहीं खोले थे। तभी उसकी जिंदगी में दोबारा कदम रखा आयुष्मान ने, वो शख्स जो उसकी मोहब्बत में बरसों से खामोश जल रहा था, जिसकी आंखों में आज भी वही मोहब्बत थी जो उसने कभी जताई नहीं, बस जिया था हर सांस में, हर ख्वाब में। पर अब हालात बदले थे, रिश्ते बदल चुके थे। अब वो सिर्फ आयुष्मान नहीं था, बल्कि वो नाम था जिससे प्रीति को फिर से जोड़ा जाने वाला था एक मजबूरी की शादी में। क्या ये सिर्फ एक समझौता होगा या फिर इस मजबूरी से जन्म लेगी एक सच्ची मोहब्बत? क्या प्रीति फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगी? क्या आयुष्मान की मोहब्बत उसके टूटे हुए यकीन को जोड़ पाएगी? और आखिर प्रेम का किया गया धोखा सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा?